Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Pratasmaraniya Shrotriya Brahmanishtha महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप मधु बाबू जी तिजोरी बालाजी भगवान की कथा का आनंद लेने वाले पवित्र आत्मा सभी साधक जन श्रोताजन कठोपनिषद में बालक निचिकेता ने द्वितीय वल्ली में प्रश्न किया। इसको प्रश्न कहने की अपेक्षा प्रार्थना कहना ज्यादा उचित है। प्रश्न में एक बौद्धिक चीज को जानने की भावना होती है और प्रार्थना में अंतर मन की अभिव्यक्ति। प्रश्न में कई बार अभिमान भी होता है, पूछने में बुद्धिमान होने का अभिमान, कोई नई चीज जानने की आकांक्षा का भी अभिमान, लेकिन याचना में कोई अभिमान नहीं होता है। कोई देता है उसमें अभिमान हो सकता है, लेकिन कोई हाथ फैला के ले रहा है उसका क्या अभिमान। बालक नचिकेता आज याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे योग्य समझते हैं तो आत्म तत्व का उपदेश करो, और वो आत्म तत्व कैसे हैं, धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, जो धर्म और अधर्म से परे हैं, धर्म का फल पुण्य और अधर्म का फल पाप, इन दोनों से आक्रांत आत्म तत्व नहीं होता है। धर्म और अधर्म, इसको शास्त्र ने अदृष्ट बोला है। धर्म और अधर्म दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका फल दिखाई देता है। जैसे बीज दिखाई नहीं देता है लेकिन अंकुर दिखाई देता है, बीज दिखाई नहीं देता है लेकिन पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जमीन के अंदर बहुत सूक्ष्म बीज का आरोपण किया है, वो कहां दिखता है? बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिसके बीजों का हमें कोई पता नहीं होता है, लेकिन चातुर्मास की बारिश जब होती है तो सभी बीज प्रकट हो जाते हैं, ये पृथ्वी हरियाली से भर जाती है, तब मालूम पड़ता है कि इतने सारे बीज जमीन के अंदर थे। ऐसे ही हमारे जीवन में अदृष्ट दिखाई नहीं देता है, पाप पुण्य दिखाई नहीं देते। हम कितना भी देखें हमारे भीतर क्या पाप और क्या पुण्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सुख दुख के रूप में प्रकट होते रहते हैं। अनंत जन्मों के पाप पुण्य, सुख दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन आदि के रूप में प्रकट होते रहते हैं। तो यहां बालक नचिकेता कहते हैं अदृष्ट से आक्रांत ये शरीर है, अदृष्ट से आक्रांत आत्म तत्व नहीं है। सुख दुख किसको प्रभावित करते हैं? परम पूज्य महाराज श्री ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। धर्म से परे हैं माने धर्म जन्य जो सुख फल है उससे आक्रांत आत्म तत्व नहीं होता, ये शरीर होता है। दुख से आक्रांत ये शरीर होता है, चोट लगी तो आत्मा को लगेगी कि शरीर को लगेगी? कोई आदमी मानो ठोकर खा के गिरा, चोट लगी, वो चोट आत्मा को लगेगी कि वो शरीर को लगेगी? आत्मा तक चोट पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। और किसी का अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, तो आत्मा का होगा कि मन का होगा? मान और अपमान ये दोनों भाव शरीर तक भी नहीं पहुंचते हैं। हमारा जो सम्मान और अपमान है, वस्तुतः ये मन का भाव है। हम अनुभव करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपमान किया। जो फीलिंग है मान और अपमान की, ये भी मानसिक हैं। मान और अपमान हमारे मन तक पहुंच सकता है, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए बालक नचिकेता ने कहा कि वो आत्म तत्व धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, न वो पाप पुण्य रूप हैं, धर्म अधर्म रूप हैं, और न धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाले फलों से आक्रांत है, माने सुख और दुख, ये फल आत्मा में नहीं होते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जब कैंसर हुआ तो बहुत परेशान हो रहे थे, परम तत्व परमात्मा का अनुभव करने वाले, काली से बात करने वाले रामकृष्ण परमहंस भी शरीर के व्याधि से आक्रांत थे। किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े महात्मा और ये कैंसर हुआ, ये बहुत तकलीफ में हैं, आप तो बहुत लोगों के कैंसर दूर कर चुके हैं, आपके आशीर्वाद मात्र से, संकल्प मात्र से बहुत से लोगों की दुख पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, तो आप काली से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप भगवती से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि हे मां मेरा कैंसर दूर हो जाए? और आप कितने दुखी परेशान हैं, आपको देख के हमें भी परेशानी होती है। राम कृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा बेटा मैं तो आत्मा हूं और ये तो शरीर है। बोले शरीर और मन ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मन जाने ये शरीर को दुख हो रहा है कौन जानता है? बोले मन। बोले मन, मैं तो मन नहीं हूं, मैं तो मन से परे हूं, मैं तन से परे हूं, आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व में न रोग है, न स्वस्थता है और न अस्वस्थता है, ये सारी चीजें मन और ये तन की हैं। बोले हम तो आत्म रूप में, आत्मा में मस्त हैं। तुमको लग रहा है कि ये बिलबिला रहा है, कष्ट हो रहा है, ये बोले किसका कष्ट है? शरीर का है। और जैसे तुम शरीर को देख रहे हो, बोले वैसे ही मैं भी शरीर को देख रहा हूं। जैसे तुम इस शरीर के दृष्टा हो, वैसे मैं भी इस शरीर के दृष्टा। इसीलिए बोला यहां बालक नचिकेता ने, आत्म तत्व की अनुभूति होने के बाद साधक ऐसा अनुभव करता है कि मैं शरीर मन सबसे परे आत्म तत्व हूं, शरीर अतिरिक्त आत्मबोध। यही है धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, ये आप सुन चुके हैं। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। हम लोग विचार कर रहे थे कि वो कालातीत परमात्मा है, इस श्लोक में बालक नचिकेता ने जिन चीजों का वर्णन किया है बहुत अद्भुत चीजें हैं। वेदांत का जो अंतिम सत्य निचोड़ बालक नचिकेता ने एक ही श्लोक में भर दिया। वो परमात्मा कालातीत हैं, उस पर काल का प्रभाव नहीं है। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काल के प्रभाव से प्रभावित ना हो। सभी चीजें पैदा होती हैं समय के अनुसार, वो संस्कृत और विकृत भी होती जाती हैं। एक पौधा पैदा होता है और समय के अनुसार वो बढ़ता जाता है, वो संस्कृत हो जाता है, उसमें पत्तियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, सैकड़ों हजारों पक्षी उस फूलों और फलों का आनंद लेते हैं, छाया में रहते हैं। ये उसकी संस्कृति है पैदा हुई, और उसके बाद फिर धीरे 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 वही पेड़ बूढ़ा होने लगता है, उसका बढ़ना बंद हो जाता है, शाखाएं निकलनी बंद हो जाती हैं, और पत्तों से फूलों से रहित एक सूखे काष्ठ में बदल जाता है, और उसके बाद न उसके पास कोई पक्षी आता है न कोई पशु, ज्यादा से ज्यादा उसको जलाने के लिए आदमी जाके काटने के लिए जरूर आता है। ये कालाक्रांतता है, काल का प्रभाव है। एक पैदा हुआ बीज नारायण धीरे धीरे परिवर्तित होकर एक काष्ठ में बदल जाता है, वो जननी योग्य बन जाता है। ऐसे आदमी के शरीर में, जीवन में भी है। आदमी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे पक्षी वृक्षों को छोड़ देते हैं, आदमी को भी आदमी छोड़ देता है। ये तो सत्य है। पहले लोग आपसे समय मांगते थे, अब आपको समय मांगना पड़ेगा। पहले लोग बोलते थे हमें थोड़ा समय चाहिए, पीछे पीछे लोग थे, लेकिन ऐसा एक समय आ जाता है हम लोगों के पीछे होते हैं और समय मांगते हैं, बेटा हमको थोड़ा समय दो। ये क्या हुआ? धीरे धीरे ये अंतिम सत्य है, ये अपने को समझना है, ये जानकर आपको इससे परे हो जाना है। ये अनिवार्य सत्य है। कालाक्रांतता, समय के प्रभाव से प्रभावित होना, ये अनात्म पदार्थों का ये स्वभाव है, ये अंतिम सत्य है। और इस सत्य को जानकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे थे, जवान हुए, जवान हैं, बूढ़े हुए, तो आपको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अस्वीकृति का ही दुख है। हमारे जीवन में जितना बड़ा से बड़ा दुख है वो अस्वीकृति का है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने यही बात कही अर्जुन को, जो अपरिहार्य सत्य है न तुम शोचि तुम अर्हसि, जो अपरिहार्य सत्य है उसको जान लेना चाहिए और उसके बाद फिर शोक नहीं करना चाहिए। हम शोक क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। इस काल के प्रभाव को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे, यही दुख तो है। आदमी देखता है बाल सफेद हो गए, परेशान होने लगता है, उसको लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बार बार देखता है झुर्रियां पड़ रही हैं, बार बार देखता है शरीर क्षीण हो रहा है। लेकिन इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, चलो ठीक है, अवस्था है। और एक बार आप स्वीकार करेंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे। आप ठंडी के समय क्या लगेगी? ठंडी लगेगी? आदमी सोचता ठंडी के समय गर्मी लग जाए, ये कैसे संभव है? हाय हाय हाय, ठंड 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 ठंड, अरे भैया ये तो ठंडी का समय है और ठंडी के समय में हम गर्मी की अपेक्षा कर रहे हैं, ये तो हमारी समझदारी नहीं है। ठंडी के समय ठंड लगेगी, थोड़ा आनंद लो, गर्मी के समय में गर्मी लगेगी। हम फील ज्यादा करते हैं, हम बीमार कम होते हैं, और महसूस ज्यादा करते हैं। सिरदर्द कम होता है, सिरदर्द ज्यादा दर्द नहीं देता जितना हमारा सोच ज्यादा दर्द देता है। आपको बुखार आ गया, कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक डिग्री बुखार है, हम झेल लेते हैं, लेकिन एक डिग्री बुखार हमारे दिमाग में बैठ जाता है, बुखार हो गया, बुखार हो गया, सोच पैदा, सोच दुख पैदा करता है। हम बहुत ज्यादा शोक करते हैं, शोक इसी को तो बोलते हैं, सोच माने शोक है। बुढ़ापा उतना दर्दनाक नहीं जितना हमारा सोच है। बालक नचिकेता ने कहा कि अपरिहार्य सत्य है कालाक्रांतता, इस दुनिया के पदार्थ परिवर्तित होते रहते हैं, काल का वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन तीनों कालों से दुनिया के सारे पदार्थ, कार्यात्मक पदार्थ प्रभावित हैं। भूतकाल बीती हुई चीजें हैं, वर्तमान काल वर्तमान में और भविष्यत काल आने वाला काल है, और ये सभी वस्तुएं इन कालों से गुजरती हैं, तीनों कालों से गुजरती हैं, अतीत हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें बीत जाती हैं, बहुत सारी चीज आने वाली होती हैं, और वर्तमान तो बहुत छोटा सा है। वस्तुतः हम जिसको काल बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा वर्तमान काल, बहुत छोटा है। कितना है वर्तमान काल? आप राम बोलना एक काल में बोल के दिखाओ तो, आप एक काल में आप राम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो, राम तो बहुत बड़ा हो गया, आप एक काल में रा बोल के देखो, रा तो बहुत बड़ा हो गया, आप एक काल में अ बोल के देखो, आप एक काल में अ भी नहीं बोल सकते, अ इतना बोले तो जो शुरू किया था वो, और वो इसका जो अंत वो, आप इतना काल का सूक्ष्म विभाजन देख सकते हैं इसमें। एक अकार शब्द का उच्चारण भी हम एक काल में नहीं कर सकते, इतना छोटा सा। ये जो वर्तमान काल है ये सीमा है, भविष्य और अतीत की सीमा है। बस ऊपर से आया और सरकता जा रहा है, और इतना ही क्षणिक हमारा शरीर है। जितना वर्तमान काल बहुत छोटा उतना हमारा शरीर है, ये विशीर्ण हो रहा है, ये काल जो है ना इसको ग्रसित करता जा रहा है। अतीत ये शरीर हमारा बीतता जा रहा है, भूतकाल ये हमारा शरीर जो है ना भूतकाल में जा रहा है, भूतकाल में कालाक्रांत है ये शरीर। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक कोई व्यक्ति थे, अरे बोले हमको बूढ़ा मत बोला करो, बोले हमको बड़ा दुख होता है बूढ़ा बोलने से, तो बोले क्या बोलना चाहिए, बोले हमको भूतपूर्व नवयुवक बोलो। भूतपूर्व नवयुवक बोलने से उसको भूतकाल का बोध हो रहा है, ओ मैं युवा था। अब बूढ़ा बोलेंगे तो वो दर्द होता है, बूढ़े बोल रहे हमको, लेकिन है क्या, वो बीत गया, अतीत हो गई, वो चीज अतीत हो गई। ये बीतने की जो घटना ये शरीर की घटना है, आने की घटना ये शरीर की घटना, आना और जाना ये शरीर की चीजें हैं, और आत्मा तो केवल साक्षी दृष्टा है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, इसलिए बालक नचिकेता ने कहा कि आत्म तत्व एक काल से परे हैं, काल से परे हैं, वो वर्तमान काल से भी परे हैं, वो भविष्यत काल से भी परे हैं और अतीत काल से भी परे हैं। उस आत्म तत्व के बारे में उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। यहां एक बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने, आत्म तत्व को शाश्वत नित्य सिद्ध किया। ये बोल करके उन्होंने कहा कि आत्मा न पैदा होती है और न आत्मा मरती है, जो आने वाली वस्तु आगे आने वाली वो पैदा होने वाली है, जो वस्तु मर चुके बीत गई है, लेकिन आत्मा न पैदा होने वाला है और न मरने वाला है। उन्होंने कहा ऐसा शाश्वत सत्य आत्म तत्व यत्पश्यसि तद्वद, आप देखते हैं, आपकी जीवन में उसका अनुभव है, आप तत्वदर्शी आत्मदर्शी हैं, तद्वद आप हमको सुनाइए। आप बोलकर उस अनुभूति को मेरे सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि शब्द जो है ना, ये ज्ञान का जनक है। गुरु के पास दो ही उपाय हैं, अपनी अनुभूति को आप तक पहुंचाने के, एक या तो शब्द अथवा दूसरा मौन। मौन भी इशारा है, मौन भी कहना है, और शब्द भी कहने का माध्यम है। आप शब्द से बोल सकते हैं हां, ऐसा भी बोल सकते हैं, या आप संकेत भी दे सकते हैं कि बिना हां कहे गर्दन हिला दे, संकेत से भी स्वीकृति मिल जाती है। अथवा आप मौन हो जाए, बोलते हैं ना कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। आपको किसी ने कोई चीज मांगी और आप मौन हो गए, सामने वाला सोचता है कि ना नहीं बोला इसने, मदद जरूर देंगे। अब आत्म तत्व के बारे में यदि इशारा करना हो तो कैसे इशारा किया जाए? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्याश्चिन्न संशयः। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जहां बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है वहां क्या इशारा समझ में आएगा? जहां इशारा भी समझ में नहीं आता है वहां क्या मौन समझ में आएगा? मौन भी एक भाषा है, इशारा भी एक भाषा है, शब्द की तरह। लेकिन उसमें समझने वाला भी तो चाहिए ना। आपने कभी कभी देखा होगा, आप अपने सेवक को कुछ बोलते हैं, कुछ लाता है, आप पुस्तक मांगते हो, जल ला के रख देता हो, आपने इशारा किया, इशारा समझा नहीं उसने। वो एक शास्त्रों की एक बात है बड़ी मजेदार, संस्कृत में सैंधव नमक को भी बोलते हैं और सैंधव घोड़े को भी बोलते हैं। युद्ध के मैदान में जाने के लिए राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया, सैंधवम आनया, उसने नमक ला के रख दिया। अरे बोले, युद्ध के मैदान में जाना है मुझे, ये सैंधव ये यहां घोड़े का काम है, यहां नमक का काम नहीं। और कोई भोजन के लिए बैठा है और बोले सैंधव माने, वहां घोड़ा ला के रख दिया। आदमी इशारा भी कहां समझता है? इशारे की भाषा को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, सामने वाले की योग्यता चाहिए, और इशारे से भी परी की जो भाषा है मौन, ये मन मने मुनेर भाव मौनम, मुनि का भाव है, मन का भाव है, मौन ये मन का भाव है। अब मन की बात कैसे समझेंगे आप? मौन भी बोलता है, अब मन के भाव को कैसे ताड़ेंगे? गुरु की आत्मनिष्ठा तत्वनिष्ठा ये मन का धर्म है, अनुभूति मन का धर्म है, और उस मन के भाव को समझना तो और अंतरंग बात हो गई, और बड़ी योग्यता की बात हो गई। अब शिष्य बहुत योग्य आदमी हो, साधना संपन्न हो, तो गुरु के मौन को भी समझ लेगा वो। जैसे गुरु को देखेगा और स्वयं में मौन होना शुरू हो जाएगा। गुरु का मौन शिष्य का मौन बनेगा। मौन माने शब्दातीत, मन से परे हो जाना। मन का मालूम पड़ना विचार है, विचार से मन मालूम पड़ता है, और जब निर्विचार मन हो जाए तो मन मालूम नहीं पड़ता है। हमारे पास एक मन है, ये विचारों के कारण मालूम पड़ता है, भावनाओं के कारण मालूम पड़ता है, अनेकों प्रकार की भावनाएं पैदा हो जाती, जलन घृणा ईर्षा द्वेष, तब मालूम पड़ता है कि मन है। अनेकों प्रकार के विचार पैदा होते हैं हमारे मन में, तब मालूम पड़ता है कि मन है। न कामादि विकार पैदा हो हमारे मन में, न विचार, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारे पास मन है। यही तो मौन है। भगवान शंकर मौन धारण कर, मन का मौन, ये परम ध्यान की अवस्था है मौन, ये कोई सामान्य नहीं है। मन तो वाणी का भी मौन है, मौन ही वाणी का भी मौन बोलते, नहीं बोलना भी मौन है, और मन का भी मौन माने निर्विचार। ध्यान की चरम अवस्था है मन, मौन। और योग्यतम शिष्य होना तो डूब जाएगा वहां, उस मौन में निर्विचार की भावना में डूबेगा वो। एक महात्मा थे, बहुत मस्ती से बैठे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक साधक था, बड़ा सिद्ध हुआ बाद में, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। महात्मा के पास जाके बैठ जाते थे क्यों, और बैठकर वो देखते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, वो संदेश क्या दे रहे हैं, और वो अपने मन को इतना एकाग्र करते जाते थे। महात्मा बैठे आंख बंद करके, और धीरे 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 वो भी आंख बंद करके बैठते, निर्विचार हो जाते थे। एक बार किसी ने पूछा कि यहां बाबा से तो हमको कुछ नहीं मिलता है, हम तो प्रणाम करते चले जाते हैं, तो मौन भाव में आंख बंद के बंद कर बैठे रहे, तुमको क्या मिलता है? हम कम से कम बात तो करते हैं उनसे, भले वो न बोलते लेकिन हम तो बात करते हैं, अपने मन की बात बता देते हैं, लेकिन तुम तो चुपचाप बैठे रहते हो, आंख बंद करके तुम भी गर्दन लटकाए बैठे रहते हो, तुमको क्या मिलता है? उस साधक ने बोला कि भैया मेरे को जो मिलता है, बोले और कहीं नहीं मिलता है, मैं आंख मूंद कर उनके मन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही मैं उनके मन तक पहुंच जाता हूं, बोले मैं डूब जाता हूं, मैं मौन हो जाता हूं, उनके साथ मेरा एक तादाद में हो जाता है। इसको बोलते गुरु के मन तक पहुंचना, गुरु के मन की भाषा को, मौन की भाषा को समझना ना है। आज बालक नचिकेता सोच रहे थे, यदि मौन हो कि गुरु मुझे ज्ञान का उपदेश करे तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? भाई कृष्ण ने गीता मौन में बोली होती, क्यों मधु बाबू? कृष्ण ने मौन में बोली होती, सिर पर हाथ रखकर भी भगवान ज्ञान का उपदेश कर सकते थे। भगवान में वो सामर्थ्य था, अर्जुन को बोल सकते थे बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, लो मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं और उतने भी तुमको ज्ञान हो जाए। मौन की भाषा से भगवान अर्जुन से बात कर सकते थे, वो सामर्थ्य था भगवान में तो था ही, और अर्जुन में भी सुनने का सामर्थ्य पैदा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि मौन से ही इसका काम होगा तो फिर दुनिया को गीता कहां से मिलेगी? आम आदमी मौन से समझता नहीं है, शब्द से समझता है। मौन की भाषा ये आम भाषा नहीं, ये बहुत अंतरंग साधकों की भाषा है, और ये अंतरंग साधकों की भाषा में यदि बात करें तो आम आदमी को गीता समझ में नहीं आएगी, गीता के ज्ञान से वंचित होंगे। इसलिए भगवान ने कहा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सुधी माने हम सब लोग, निमित्त तो अर्जुन है, बछड़ा अर्जुन है, और भगवान ने दूध ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी दुग्ध का पान किया, कराया अर्जुन को, और जो बचा हुआ जो दूध था वो कौन ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। करुणावान गुरु भगवान श्री कृष्ण मौन में नहीं बोलते हैं, भगवान ने शब्द का आश्रय लिया, क्योंकि शब्द जो है ना व्यापक है,